महंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, कस्यचित् तु अथा कालस्य नासत्यौ आश्रमा आगतौ तौ पूजयित्वा प्रोवचा वयः मे दत्तम् ईश्वरौ कस्यचित्त्वथा कालस्य कस्यचित्त्वथा कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ नासत्यावाश्रमागतौ तव पूजयित्वा प्रोवाच तव पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ वयो मे दत्तमीश्वरौ कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ।
Thank you.
माता जी कश्चित कुछ समय के बाद तू लेकिन अथ इस प्रकार कालस्य समय के बीतने पर ना सत्या दोनों अश्विनी कुमार आश्रम श्रवण मुनि के स्थान पर आगतव पहुंचे तव उन दोनों को पूजयित्वा सत्कार तथा नमस्कार करके प्रोवाच कहा वयह तारुण्य में मुझको दत्तम कृपा करके दे दो ईश्वर हो क्योंकि तुम दोनों ऐसा करने में समर्थ हो। कुछ काल बीतने के बाद अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी, चाहे वो वृद्ध हो या वृद्ध क्यों न हो, तरुणापा दे सकते थे। निस्संदेह बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति में से शव में भी जीवन फूंक सकते हैं। शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सैनिकों के ऊपर सैनिकों के उपचार के प्रसंग में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र शव को जीवित करने या वृद्ध शरीर में तरुणापा लाने में असमर्थ है, किंतु इस श्लोकों से पता चलता है कि यदि कोई वैदिक सूचना से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। दोनों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के ही समान आयुर्वेद में पटु थे। यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जानी है तो इसे प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो भगवान का भक्त बनना है। इसी पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्पतरु का पक्व फल माना जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम नौवे स्कंद के तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम आए। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। श्रीमद् भागवतम में जो जो कथाएं आई है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ऐसे समय महाराज परीक्षित को बता रहे हैं जब बहुत दिन कथा करने के बाद फिर से एक बार कथा करने का प्रसंग आने वाला नहीं था। उनके पास केवल 7 दिन थे। हम सब जानते हैं कि महाराज परीक्षित को यह शाप मिल चुका था कि 7 दिन के बाद सर्पदंश से उनकी मृत्यु होगी, और उसको इसी प्रकार से स्वीकार करके महाराज परीक्षित अंतिम समय में सबसे योग्य क्या चीज है ये सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो हम समझ सकते कितना गंभीर परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में सुखदेव गोस्वामी हर शब्द बहुत सोचकर बताएंगे, क्योंकि हर शब्द का उसके ऊपर कुछ परिणाम होना चाहिए, योग्य परिणाम। तो हमने देखा पिछले कई अध्यायों में मनु के अलग अलग प्रकार के जो वंश है, वंशावली है, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं। और इस वंशावली में जो जो प्रसिद्ध राजा है वो इसलिए नहीं प्रसिद्ध है, उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। उसी प्रकार से अब ये सुकन्या का प्रसंग आ रहा है, जिन्होंने शायद थोड़ी लिंक टूट गई होगी इसलिए बताते हैं कि सुकन्या एक बहुत ही सुंदर राजकन्या जो उनके पिता के साथ वन में विहार करने आई है, और च्यवन मुनि के आश्रम में जब सब लोग पहुंचे तो बालिका है वो अपने मित्रों मैत्रिणी में जो उनकी सहेलियां थी उनके साथ फूल फल आदि इकट्ठा कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि एक इसको क्या कहते हैं हिंदी में जो मिट्टी का अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था उनकी मिट्टी का, और उस मिट्टी के अंदर से 2 होल दिख रहे थे और होल में कुछ जबरदस्त चमकीली चीजें दिख रही थी। फिर क्या है? तो अनायास ही बच्चे जैसे रहते हैं, उन्होंने एक छोटी सी डाली ली किसी वृक्ष की और उससे उसमें घुसा दी, और अनायास ही वहां से खून बहने लगा। वो डर गई, भाग चल गई, और थोड़ी देर में पता चला राजा को कि अरे सबका प्राण घुट रहा है, मल मूत्र बंद हो गया है, गड़बड़ है कोई, तो राजा ने कहा पर किसने कोई अपराध तो नहीं किया? च्यवन मुनि का इतने बड़े संत है, उनका कोई जरूर अपराध किया होगा। तो सब लोग हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कन्या राजकन्या थी, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से कुछ अपराध हुआ है, मैंने ये दो चमकीली चीजों को पोका है और वहां से खून बहा। तो वे समझ गए कि इसके अंदर च्यवन मुनि बैठे थे। तो बहुत क्षमायाचना की, क्योंकि राजा जानते थे कि च्यवन मुनि अत्यंत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। तो क्षमायाचना करने लगे। तो च्यवन मुनि ने पूछा कि यह आपकी पुत्री जिसने मेरी आंख फोड़ी है, क्या उसकी विवाह हो गया उसका? तो ऐसे जैसे ही उन्होंने बात की, राजा समझ गए उनके मन में क्या विचार है, और तुरंत ही उन्होंने कहा ठीक है, मेरी पुत्री अविवाहिता है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। पुत्री ने भी कोई विरोध नहीं किया और उनका विवाह हो गया। जब इनका विवाह हुआ तभी च्यवन मुनि सुकन्या के पितामह होने चाहिए थे, पिता के पिता, ग्रैंडफादर, लेकिन विवाह कर बैठे हैं, वृद्ध हैं, और तपस्वी होने के कारण उनकी तपस्या इस प्रकार से चलती थी कि उसके साथ साथ सुकन्या को चलना पड़ता था। कभी कोई भी गड़बड़ होती तो बहुत क्रोधित हो जाते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार के जो टेम्परामेंट है, परफेक्शनिस्ट लोग, जिनको सब कुछ सही चाहिए, तो उनको बहुत क्रोध आता है कुछ भी गड़बड़ हो गया तो। और सुकन्या उसको संभाल रही थी। और आज के श्लोक में हम देखते हैं, अभी कुछ समय इस प्रकार से बीता है, सुकन्या बहुत आदर से उनकी सेवा कर रही है और अब उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो वहां पर अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार या ऐसे वैद्य हैं जो कि बिल्कुल धन्वंतरी की तरह है और सब कुछ, हर प्रकार की सुविधा शरीर के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहां च्यवन मुनि उनसे कह रहे हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, जवान है, तो मुझे उसी प्रकार का शरीर चाहिए, क्यों नहीं आप मुझे ये तरुणापा दे दीजिए। श्रील प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में अधिक बातें कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये वैद्य इतने निपुण थे कि चाहे तो किसी मृत शरीर में भी जान डाल सकते हैं, इनकी निपुणता है। लेकिन प्रभुपाद बहुत बुद्धिमत्ता से वो देख रहे हैं कि इस निपुणता के ऊपर श्रीमद् भागवतम नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी निपुणता यह है कि हम भक्ति में प्रवेश करें। आखिरी में देखेंगे, किंतु सबसे बड़ी पूर्णता, सिद्धि, तो भगवान का भक्त बनना है। ऐसे नहीं कि हमें तरुण बनना चाहिए, बहुत खूबसूरत बनना चाहिए, जवान रहना चाहिए। भौतिक कोई भी चीज हासिल करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो प्रभुपाद के इसी मूड को देते हुए देखते हुए हम आज की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सुकन्या के जीवन में जो कुछ भी बाधा आई है उसको इसने कैसे स्वीकार किया है। यह हमारी वैदिक संस्कृति है। वेदों की संस्कृति क्या है? वर्णाश्रम की संस्कृति। वर्णाश्रम में पहले तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जो सारे जो ऋषिगण ब्राह्मण बैठे हैं उनको कहते हैं अतापुंभिर द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठो वर्णाश्रम विभागशा। ये वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आखिर में स्वनुष्ठितस्थ धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्। हम जो जो कार्य कर रहे हैं संसार में इस जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, इसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? समसिद्धिर हरितोषणम। अगर ये परिणाम नहीं है तो वर्णाश्रम नहीं है, उसको आसुरी वर्णाश्रम कहा जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं दो प्रकार के वर्णाश्रम है, एक दैवी वर्णाश्रम और दूसरा आसुरी वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम मतलब क्या है कि वर्णाश्रम के जो नियम है उनको पालन करके हमारा उद्दिष्ट क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की, भगवान का संतोष। लेकिन हम इसी सिस्टम को चाहते हैं, वर्णाश्रम तो चाहते हैं, लेकिन उसका अगर अंतिम निर्णय यह है कि मैं कैसे इंद्रिय भोग में लगे रहूं, तो उसको आसुरी वर्णाश्रम कहा जाता है। और वही आसुरी वर्णाश्रम आज संसार में चल रहा है। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जबकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भगवद गीता कहती है, खास श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने ये सिस्टम बनाई, मैंने ये सृष्टि निर्माण की, मैंने वर्णाश्रम को बनाया। कैसे बनाया? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने विभाजन किया है इस संसार के लोगों का। लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं, मेरा जन्म जो अगर है किसी बड़े परिवार में हुआ है तो मेरा ऐसे ही चलता रहे। डॉक्टर का बच्चा सोचेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी बड़े बिजनेसमैन का लड़का सोचेगा मैं बचपन से अपने आप बिजनेसमैन बन गया जबकि कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इस प्रकार का जो सिस्टम है जिसको आज के जमाने में कास्ट सिस्टम कहते हैं, जाति भेद, ये वर्णाश्रम नहीं है। क्योंकि उसका जो परिणाम यह है कि मैं किसी प्रकार से अपने स्थान को न छोड़ूं और अपने स्थान का फायदा लेकर मेरे शरीर को भोग दूं। तो दोनों का केंद्र बिंदु अलग है। वर्णाश्रम जो दैवी है उसका केंद्र बिंदु है समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान, और जो आसुरी वर्णाश्रम है उसका केंद्र बिंदु क्या है, माया, मेरी इंद्रिय लोलुपता, मेरा भोग। और इसी के कारण संसार में सब उथल पुथल मचती है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक किसी को यह ज्ञान नहीं होता है वर्णाश्रम का, जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक अपना जो बिहेवियर है दिस विल बी कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। अभी हम यहां देखेंगे सुकन्या का जो व्यवहार है कैसा है, रिस्पॉन्सिबल। उसने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित मिलना चाहिए, यह मेरे लिए सही है। उसने स्वीकार किया कि प्रारब्ध ने मेरे नसीब में लिखा हुआ है, यह मुझे स्वीकार है। लेकिन आज की स्थिति क्या है हमें बताया जाता है, सक्सेस स्टोरी, किसी की सक्सेस स्टोरी बताई, इसने ये देखो एक ऐसे भिखारी था और इस प्रकार से उसने जीवन जो जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका उपयोग करके आज ये बड़ा अमीर बन गया। ये एक सक्सेस स्टोरी होती है। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, जिन्होंने हर प्रकार का प्रयास किया है बड़ा व्यक्ति बनने का लेकिन कभी बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? उनके नसीब में नहीं था। हर व्यक्ति बनना चाहता है कोई कोई बड़ा, हर व्यक्ति बिजनेस बनना चाहता है, डायमंड मर्चेंट बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, उसका सपना रहता है। हाँ, कोई व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, सब लोग सोचते मैं ऐसे बन जाऊंगा बड़ा, लेकिन होता क्या है, इस प्रयास में न जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। एक आध कोई जाता है जिसका नसीब में लिखा हुआ है, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्मों से बनता है। तो ये जो कर्मों की जो भाषा है, ये वर्णाश्रम के लिए ही बनी है, गुण कर्म विभागशा, कर्म के अनुसार गुणों के अनुसार आपका विभाजन होगा, और उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करके जो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में भगवान को कैसे संतुष्ट करना, यह हमारा धर्म है। भक्ति में आने के बाद, खास करके चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में आने के बाद, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम वगैरह क्या है, अहो बाह्य, चैतन्य महाप्रभु ने कहे तो बाह्य है, वर्णाश्रम की हमें क्या जरूरत है, यह सही नहीं है। अन्यथा श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी ऐसे क्यों बताएंगे कि वर्णाश्रम से सम सिद्धि हरितोषण, आपके अपने अपने कर्तव्य करके भगवान को प्रसन्न करो। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अल्टीमेट गोल, सबसे वर्णाश्रम का पालन करना यह सबसे बड़ा गोल नहीं कहा है, सबसे बड़ा जीवन का ध्येय उन्होंने कहा है प्रेम पुमार्थो महान, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन प्रेम तब होगा जब उनको प्रसन्न करेंगे, क्योंकि प्रेम अपनी ताकत से नहीं होता है। हम कितने भी सोचे मैं भगवान से प्रेम करूंगा, मैं भगवान से प्रेम करूंगा, लेकिन जब तक भगवान अपनी कृपा नहीं देंगे तब तक हम भगवान को समझ भी नहीं सकते, तब तक हमारे लिए कोई पुतला है। इसलिए हमारे जीवन में जो जो हम भक्ति के जीवन में, वर्णाश्रम के जीवन में जो जो कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, यह ढूंढना जरूरी है। हम जाप कर रहे हैं, हर दिन सवेरे भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, क्या उद्देश्य है। अगर कोई सोचा इससे मुझे बहुत शांति मिलती है, हाँ इससे मुझे बहुत आनंद आता है, आता होगा, शांति भी मिलती है, सही बात है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारा उद्देश्य है समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जप कर रहे हैं। इसलिए हम थके हैं, हमारा मन ठीक नहीं है, सैर भैर है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि मैं बहुत मिठास से, बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लूंगा। और इस प्रकार से जब हम भगवान को ये दिखाते हैं कि मेरा जो आनंद है दिस इज सेकेंडरी, इसको ज्यादा महत्व नहीं है। हम विग्रह, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, सुंदर उनका डेकोरेशन करते हैं, अगर हम ये डेकोरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आके बाद में वाह 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 प्रभु आपने क्या किया, कैसे भगवान को सजाया है, और ये अगर हम चाहते हैं कि लोग ऐसा कहें और इसके लिए हम भगवान को सुशोभित कर रहे हैं, तो हम असल में भगवान को सुशोभित कर नहीं रहे, हम लोग अपने अहंकार को सुशोभित कर रहे हैं, अपना अहंकार। सब लोग आके बोलेंगे कितने महान भक्त हो आप। वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा इसलिए नहीं करते हैं ताकि लोग आके बोले आप कितने महान भक्त हो, उस वैष्णव को आनंद मिलने के लिए। चार नियमों का पालन, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं और नशापान नहीं, इसलिए नहीं करते ताकि लोग बोले क्या तेज है आपके चेहरे पर, जबकि तेज आता है सही में। आप जैसे ये चार नियमों का पालन करेंगे आपके आंखों में एक अलग प्रकार की चमक आएगी, आपका चेहरा तेजस्वी दिखेगा, ये सही बात है। आप कितने सारे भक्तों ने आपको बोला होगा, बहुत सारे लोग सालों के बाद मिलते, 20 साल के बाद फिर आप तो वैसे के वैसे हैं, सही में भक्त लोग बूढ़े ही नहीं होते जल्दी। क्या कारण है? कि नियमों का पालन करते हैं। हमारे एक भक्त हैं, अभी यहां बैठे कि नहीं बैठे, तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे मंगल आरती के लिए आ रहे थे, तो हमारे दूसरे भक्त ने बोला, ये दिस बॉय इज वेरी सीरियस, वेरी सिंसियर। तो मैंने कहा, प्रभु दिस बॉय इज गेटिंग हिज डॉटर मैरिज नेक्स्ट वीक। हाँ, मैं बोला, ये बॉय नहीं है, इसकी लड़की की शादी अगले अगले गुरुवार को है। वो बॉय क्यों दिख रहा है? क्योंकि पालन कर रहा है। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। चार नियमों का पालन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्री विग्रह की आराधना, जो जो हम कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है सम सिद्धि हरितोषण। और इसीलिए ऐसे महान भक्तों का वर्णन आता है, सुकन्या, जो कि उसका उद्देश्य निश्चित है। वो जानती है कि ये शरीर, जबकि बहुत सुंदर शरीर था उनका, उसका वर्णन है लोटस आईज डॉटर। हाँ, उनकी आंखें बिल्कुल कमल के पुष्प की तरह थी, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, कलरफुल। तो ऐसे शरीर से तो कोई भी आकर्षित होगा, खुद आकर्षित होगी, वो सोचे कि मैं ऐसे ही रहनी चाहिए। लेकिन वो जानती थी कि ये शरीर नश्वर है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध में, इस जीवन में मेरे नसीब में ऐसे लिखा है कि मैं एक बूढ़े से शादी करूंगी। उनको ये पता नहीं था कि अश्विनी कुमार आने वाले हैं। ये आज का श्लोक है, उसके पहले ही उन्होंने बहुत सेवा की है च्यवन मुनि की। यह हमारा कल्चर है, यह हमारी संस्कृति है कि हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो जो कार्य करते हैं, अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है, उसका अगर कुछ गलत परिणाम है, उसको हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने इनको जमीन दे दी कि चलो जाओ अब खांडव वन में चले जाइए, ताकि झगड़ा ना हो भाई भाई में। खांडव में चले गए, खांडव वन में पूरा जंगल जला दिया, मैदानों के सहाय से सुंदर एक राजमहल बना दिया, इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली, नई दिल्ली बोलते। इंद्रप्रस्थ बनाने के बाद राजस्व यज्ञ का आयोजन किया, वो भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं संसार को कितनी ताकत है मेरे पास, मेरे पास कैसे भाई है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मेरी ताकत को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो, ऐसे नहीं। वो खाली सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे कुछ यज्ञ करना चाहिए। और इस राजस्व यज्ञ में अनेकों राजाओं को बुलाया गया और अपने भाइयों को भी बुलाया गया। धृतराष्ट्र आए, दुर्योधन आए, उनके 100 भाई आए, 99 भाई आए, शकुनी आए, सब लोग आए। और उनका वैभव देखकर इतनी ईर्ष्या बढ़ गई उनकी, जबकि युधिष्ठिर महाराज और सारे भाई, वो तो खाली सोच रहे थे यह ऐश्वर्य, ये सब कुछ केवल भगवान के लिए इच्छा की वजह से मिला है और इनकी इच्छा से जैसे चलते रहेगा। जब सब राजस्व यज्ञ खत्म हो गया, शिशुपाल का वध हो गया, सब लोग जाने लगे राजा, तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने जो शहर था उसके अंतिम सीमा तक जाकर सबको छोड़ के आए। ये एक कर्तव्य होता है, जैसे घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको घर में से ही बाय बाय नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समय तक जाना चाहिए उनके साथ, उनको कहना चाहिए धन्यवाद आप आए, फिर से आइए। ये हमारी संस्कृति है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण वो कहने लगे अभी मैं निकलता हूं, तो सारे भाई रोने लगे, सब लोग साथ में कृष्ण के साथ बहुत दूर तक चले गए और कृष्ण को रोकना पड़ा, बोले अभी आप रुक जाओ, अभी चले जाइए आप वापस, मैं अकेले जाना चाहता हूं। बहुत कठिनाई से फिर से लोग वापस आ गए। और फिर व्यासदेव वो जाने निकले, तो सब लोग सोच रहे व्यासदेव जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ प्रश्न पूछे जाए। तो व्यासदेव को प्रश्न पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि देखो जब मैं राजस्व यज्ञ में बैठा था तो इतना अत्यंत आनंदशाली ऐसा आनंद का एक क्षण था, लेकिन उस समय नारद मुनि मेरे बाजू में बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ अपवित्र घटनाएं देख रहा हूं, जबकि राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। क्या था वो, कुछ होने वाला है क्या? तो हम देखते हैं व्यासदेव तो कैसे त्रिकालदर्शी। उन्होंने कहा राजन कुछ ही समय में आपको 13 साल तक वनवास भोगना पड़ेगा, जबकि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपके ऊपर बहुत ही भयानक संकट आने वाला है। युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल चिंता से गिर गए। ऐसे नहीं कि भक्तों को चिंता नहीं होती, चिंता होती है, लेकिन उस चिंता का जो परिणाम है वो एक ही होता है, वो और गहराई से भगवान का आश्रय लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज चिंता से इतने ग्रस्त हो गए, भाइयों को बुलाया तो देखो ऐसे ऐसे व्यासदेव ने कहा है, क्या किया जाए? तो भाइयों ने कहा कि देखो ये तो तलने वाला नहीं अगर बोला है तो, लेकिन हमारे पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इनकी इच्छा होगी, आप अपने धर्म को मत छोड़ो। लेकिन उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने व्रत कर लिया कि आज से मैं किसी क्षत्रिय राजा को कोई भी एक भी बुरा शब्द नहीं कहूंगा, सबसे मैं समान भाव रखूंगा, सब रिश्तेदार शत्रु सबसे मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, ताकि ये वनवास न हो। किसलिए? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वनवास नहीं चाहता क्योंकि आप सब लोग को तकलीफ होगी। वो नहीं चाहते कि मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप सबको क्यों तकलीफ होनी चाहिए? और फिर भी हम जानते हैं कुछ ही समय में, जबकि महाराज युधिष्ठिर सब कुछ जानते थे, द्यूत के लिए उनको बुलाया गया दुर्योधन द्वारा और सब कुछ उनका छीन लिया गया। और उस प्रसंग में भी युधिष्ठिर महाराज क्या करते रहे, वो देख रहे थे कि क्या होने वाला है, दिख रहा है, व्यासदेव ने भी बताया है, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है, उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए ये युधिष्ठिर महाराज से हम सीखते हैं। कैसे स्वीकार करना चाहिए? जो आया है भगवान की दया से आया है। भगवान को कैसे कहते हैं? सर्व कारण कारणम। जो जो कुछ बनता है वो भगवान से होता है। ऐसे नहीं कि जब भगवान कुछ हमारे फ्लाइट, हम ट्रैफिक जाम में अटके हैं लेकिन फ्लाइट को भी अपने आप लेट हो गई और मुझे फ्लाइट मिल गई, भगवान कितने दयालु है। ऐसे सोचते हैं ना हम लोग कभी कभी, या मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं कुछ पढ़ाई नहीं फिर भी पास हो गया, भगवान कितने दयालु है। या फिर भयानक एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी मैं बच गया, भगवान कितने दयालु है। सही बात है, दयालु है ही, लेकिन आप मरते तो भी भगवान दयालु ही थे, आप फेल होते तो भी भगवान दयालु ही थे, क्योंकि वही आपके लिए सही है। भगवान केवल अच्छी चीजों के कारण नहीं है, जो जो होता है उसके कारण है। भक्त यही जानकारी रखता है, यही उसकी महानता है कि हर परिस्थिति में वो ये जानता है कि इसके पीछे कुछ योजना है। युधिष्ठिर महाराज जानते थे इसके पीछे कुछ योजना है भगवान के, और इस योजना में मुझे सहयोग देना चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं तो यही सही, अर्थात स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि यह सब ना हो, नेचुरल। जैसे जीसस क्राइस्ट, इनके बारे में कहा जाता है उनको भी पता था कि कुछ समय के बाद उनको पकड़ा जाएगा, सूले पर लटकाया जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं प्रार्थना में, ओ लॉर्ड यू हैव गिवन मी दिस कप, पॉइजन कप, ये पॉइजन, ये जो विष है आप चाहते कि मैं पीऊं, मैं चाहता हूं कि नहीं पीऊं, लेकिन फिर भी डाय विल बी डन, जो आपकी इच्छा है वही मैं करूंगा। वो चाहते हैं मैं नहीं करूं, मैं नहीं पीना चाहता इसको, लेकिन आपकी जो इच्छा है वही सर्वोत्तम है। सुकन्या भी यही दिखा रही है, वो क्या सोच रही है, ठीक है, उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं देखा, आई वॉज इनोसेंट, मैं इनोसेंट थी, मैंने गलती से वो पोका, गलती से सब हो गया। आज का अगर हम देखेंगे तो पूरा समाज क्या लगा है, जस्टिफिकेशन पे लगा है, एक कल्चर है जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई एवरीथिंग। अभी हाल ही में हमने पढ़ा पुणे में किसी ड्राइवर ने, उसको लीव नहीं मिली, उसके सुपीरियर ने लीव सैंक्शन है, क्या किया उसने, वो बस निकाल के जहां से वन वे ऐसी गाड़ियां उसके विरुद्ध दिशा में जा रहा है, और बेफान गाड़ी लगाने से 9 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई, सामने ही मर गए सब लोग, उनके ऊपर चढ़ा गया, और फिर कोर्ट में जाकर क्या बोलता है, मेरा मानसिक संतुलन खो गया, जस्टिफिकेशन, एंड वी एक्सेप्ट इट, हमारा लॉ उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इट कि बराबर है, वो साइकेट्रिक केस है, उसको दवा दो। अरे लेकिन जो मरा उसके परिवार का क्या, उसका कौन देखेगा, ये दिस इज कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। आप अपने हृदय में कोई व्रत निर्माण नहीं कर सकते, व्रत का पालन नहीं कर सकते, चार नियमों का पालन नहीं कर सकते, आप बेफान होना चाहते हो, फिर हम उसको जस्टिफिकेशन, ये सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, ये जस्टिफिकेशन है, दैट इज नॉट वैदिक कल्चर। वैदिक संस्कृति ऐसी नहीं है, वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरे वर्ण और आश्रम के अनुसार मैंने जो कार्य किया, मैंने जो कर्म किया है, उसका अगर मुझे फल मिल रहा है तो मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। असल में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, खास करके भक्त, जो अपने जीवन में जो जो गलत चीजें होती है, जो जो भयानक चीजें होती है, उनको स्वीकार करते हैं कि भगवान आपने दया से इतना सारा मुझे मुझे बोध छा उसको कम कर दिया है, भगवान धन्यवाद। वो कहते हैं ऐसे भक्त लोग भगवान का चरण कमल प्राप्त करने के अधिकारी है। तो हमारी बाह्य स्थिति सुधारना ये वर्णाश्रम सिखाता नहीं है। असल में हमारी भक्ति का जो मार्ग है इसमें यश क्या है, अगर कोई पूछे आप लोगों का क्या यश है, कौन सा यश है, यही है सम सिद्धि हरितोष, भगवान प्रसन्न है, यही हमारा यश है। हमें बड़ी गाड़ी मिली, बहुत पैसा आया, स्वस्थ शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, परिवार वाले अच्छे मिले, मित्र अच्छे मिले, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यह हमारा यश नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं जिनका नाम है श्रीधर। ये श्रीधर केला बेचने वाले थे। अभी आप जानते हैं बंगाली लोग, बंगाल नवद्वीप खास करके केला हर जगह उगता है। आप जहां देखो वहां केले ही केले हैं। ये व्यक्ति ऐसे केले का व्यापार कर रहा है, आप समझ गए, मतलब हर घर में केले हैं, हर घर में केले का पत्ता है, फूल है, केले के फल है, सब कुछ है, फिर भी ये केले का व्यापार कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं आपकी, देयर इज नो मार्केट, इस मार्केट है ही नहीं, कोई एक आध दूसरा व्यक्ति आता होगा, लेकिन वो क्या सोचता है, वर्णाश्रम के अनुसार यही मेरा कार्य, मैं एक किसान हूं, केलों को बेचना, उससे जो आएगा उससे मैं खर्चा करके भगवान की पूजा करूंगा। जब केले बेचने बैठता था तो हमारे निमाई पहुंच जाते थे और कहते थे श्रीधर ये केले कितने में दिए, ये केले के पत्ते कितने में दिए, तो कुछ बताते थे कीमत जो कि सबसे कम थी, लेकिन वो बोलते कितना महंगा बेच रहे हो आप, बोले महंगा, आप जाके पूरी बाजार में देख के आ जाओ, ये सबसे सस्ता माल है। बोले नहीं 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 नहीं, आप बहुत महंगा बेच रहे हो, इससे आधी कीमत में दे दो। बोले आधी कीमत में मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं, मैंने कम से कम प्रॉफिट रखा है। तो नहीं, तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे पास इतना धन छुपा के रखा है, तुम बाहरी जो वेश है वो बहुत छद्म है, या ऐसे दिखाते हो तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारे बहुत धन है। और इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट कर करके निमाए उसके जो केले के पत्ते फूल फल सब ऐसे ही, बोला तुम्हारे साथ बहस करने में कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे लेके जाऊंगा। हाँ, ऐसे लेके जाते थे। और ये सत्य कैसा बालक है, हर दिन आके कुछ ना कुछ इस प्रकार से बातें करता है, ऐसे सोचते थे। लेकिन दूसरे दिन सवेरे जब फिर से केले बेचना देते थे, सोचते थे निमाई कब आएगा। हाँ, राह देखते थे, जिस रास्ते से वो आते थे वो देखते थे कब ये लड़का आएगा, क्योंकि अजीब प्रकार का एक आकर्षण उनके हृदय में था इस बालक के प्रति। वो जानते नहीं थे कि भगवान स्वयं है, इतने सुंदर बालक, सोच रहे कब आएंगे। और इस प्रकार से हर दिन आते थे, बहस करते थे और केले ऐसे ही लेके जाते थे। अब ये श्रीधर कोई नहीं जानता उसको, बेचारा अपनी कुटिया में अकेला ही भजन करता था गंगा मैया की पूजा। ये देखो इतना सा पैसा मिलता है, उसमें से आधा पैसा वो गंगा की पूजा के लिए लगाते थे और उस आधे में परिवार चलाते थे। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को अपना निजी स्वरूप दिखाया महाप्रकाश लीला शिवास आंगन में, तब उन्होंने भक्तों से कहा जाओ श्रीधर को बुला के लेके आओ। अभी सब लोग पूछ रहे श्रीधर कौन है, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि इतना बड़ा भक्त है। तो भगवान ने कहा जो केले बेचता है वो श्रीधर, उसको लेके आइए, कोला बेचा श्रीधर। तो उसको लाया गया और श्रीधर ने जब प्रणाम किया श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो महाप्रभु ने देखो श्रीधर आप जो चाहते थे वो मैं यहां खड़ा हूं। और श्रीधर ने देखा कृष्ण और बलराम पूरा वृंदावन पूरा आध्यात्मिक संस्कार संसार चैतन्य महाप्रभु के पीछे खड़ा है। उन्हें प्रणाम किया, दंडवत बार 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 प्रणाम किया, रोने लगे प्रसन्नता से। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर कुछ मांगो। अभी भगवान पूछ रहे कुछ मांगो, मांगना चाहिए, लेकिन ऐसे भक्त विरला होते हैं, इसलिए उनका नाम ग्रंथों में आता है। श्रीधर ने कहा मुझे किस चीज की आवश्यकता है, सब कुछ तो मेरा ठीक है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि भाई कुछ मैं मांगू आपसे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जबकि भयानक गरीबी उनके घर में थी, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं देखो आप छोटा मोटा मत मांगो, आई कैन गिव यू ए प्लैनेट, आपको मैं संसार का राजा बना सकता हूं, आपको किसी में स्वर्ग लोक का राजा बना सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं आठों सिद्धियां दे सकता हूं। सिद्धि क्यों नहीं है, कोई भी हमारे जैसा व्यक्ति सोचेगा ठीक है अष्ट सिद्धि ले लेंगे प्रचार में काम में आएगा। लेकिन उन्होंने कहा क्या क्या कहा, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। अभी जब बार बार महाप्रभु कह रहे मांगो मांगो मांगो, फिर महाप्रभु ने देखो मैं जब किसी को कुछ देना चाहता हूं उसको आपको लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट टू प्लीज मी यू एक्सेप्ट समथिंग, केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए तो कुछ मांगो। अच्छा आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ मांगना है तो मैं जरूर मांगूंगा। देखो मांगना भी है तो किस लिए मांग रहे, भगवान चाहते हैं कि मैं देना चाहता हूं, मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप कुछ लेंगे तो। ये सही भक्त है। उसने कहा ठीक है अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि आप हर जीवन में मेरा जब भी जीवन मैं फिर से जन्म लूंगा तो मैं ऐसे ही इसी श्रीधर के ही आवेश में रहूंगा, आप ऐसे ही बालक का रूप लेकर मेरे सामने आइए, ऐसे ही हर दिन झगड़ा करके मेरे से केले फ्री लेके जाइए, यही मेरी इच्छा है। दिस इज सम सिद्धि हरितोषण। ये भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। हमारा जप, चार नियमों का पालन, जो जो हम करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है सम सिद्धिर हरितोषणम। और यही श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में सब कुछ कहते हैं। वैद्य के बारे में बोलते हैं, वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है, लेकिन आखिर में क्या बताते हैं, ये सब पूर्णता जो है वैदिक शास्त्र की या और कोई शास्त्र की, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने वाले भक्त बनते हैं, यही हमारी पूर्ण सिद्धि है। तो आज के श्लोक से हम इतना ही सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कॉमेंट्स है इसके ऊपर? इनका प्रश्न है, भक्ति करने से क्या प्रारब्ध बदल सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आपका प्रारब्ध बदलना है तो केवल भक्ति से ही बदलेगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं, गीता के अंत में बता रहे हैं कि अगर आप मेरे शरण में आ जाओगे, भक्ति करोगे, तो क्या होगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, जो जो आपके सिंपल रिएक्शंस है, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम दिस। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सही भक्त इसके लिए भी कार्य नहीं करता कि मुझे ऐसे कुछ प्राप्त हो, भगवान स्वयं कर देते हैं, खुद करते हैं। सही भक्त जो है वो एक ही सोचता है, अर्थात हम उस स्तर पे नहीं होंगे। हम जो भी स्तर पर है, हमारा स्तर है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम स्तर जो है उसमें हमारा कार्य है कि हम जो जो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, केवल हमारा कार्य हरि की प्रसन्नता का। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहते हैं, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको, केवल हरि का नाम लो, हरि की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। जबकि ये एक बात है कि भगवान के भक्त जो शरणागत होते हैं, भगवान उनसे सारी जो रिएक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्तों को ये याद होना चाहिए कि उनका कार्य क्या क्या हुआ था, पिछला इतिहास क्या है, इसलिए छोटा मोटा रिएक्शन भगवान देते हैं, लेकिन वो उनके पूरे कंट्रोल में होता है। भगवान चाहते हैं कि इस भक्त को मैं किस सबक सिखाऊं या कुछ उसको मैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मदद करूं, इसलिए कुछ रिएक्शन देते हैं, उससे ज्यादा उसका मतलब नहीं होता है। और इसीलिए भक्त उसको बहुत आनंद से स्वीकार करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस, आपने तो एकदम ब्रह्म वाक्य कह दिया एकदम सही बात है। जब हम भक्ति करते हैं तो माया क्यों आएगी? यहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य की तरह है, जहां सूर्य है अंधकार नहीं हो सकता। तो हम भक्ति करेंगे, कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, तो माया क्यों आएगी? लेकिन जैसे हम भक्ति को विमुख होकर जाएंगे तो क्या होगी, माया बाजू में खड़ी है, वो क्या बोलते, उसके झपटिया धरे, उसको वो पकड़ के देखते रहते, कभी इसका ध्यान इस तरफ जाए तो पकड़ झपट के पकड़ लेती है। इसलिए सेफ प्लेस, सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, ऐसे भक्तों के बीच रहना जो भक्ति में बहुत अग्रेसर है, भक्ति में बहुत रुचि रखते हैं। केवल बाह्य रुचि से भक्त नहीं, तिलक लगाया, कंठी लगाया, धोती कुर्ता, ये नहीं, भक्ति में रुचि रखते हैं और भक्ति में आगे जाना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं बहुत सिंसियरिटी से, ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारा कल्याण जरूर निश्चित है, फिर हमें माया नहीं सताएगी। ये वॉर है, दिस अ वॉर। प्रभुपाद कहते थे कि व्हेन यू बिकम ए डिवोटी, आप जब भक्त बनते हो तो आप क्या कर रहे हो, माया के खिलाफ एक युद्ध की चुनौती दे रहे हो माया को, और माया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण की जितनी शक्ति रखती वो, तो हमारा एक तो है कि हमारे खुद की ताकत पर हमें विश्वास नहीं होना चाहिए। भक्त कभी भी अपनी ताकत के ऊपर माया को चुनौती नहीं दे सकता। वो कभी देता है कृष्ण की ताकत के ऊपर, भक्तों की सहायता के ऊपर। वो कहता है ठीक है माया आ जाओ, लेकिन अकेला रहेगा तो भागता है और कहां आता है, भक्तों के बीच आ जाता है, सुरक्षित स्थान। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।